धवला लेक्चर नंबर 7। ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः
सिद्धेश्वर,
ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाऊणं सिद्धमणन्तमणिन्द्रिय मणुवममपत्थसौखमणवच्चम् केवलपहोहनिच्य दुर्नयतिमिरञ्जिनम् नमः। आचार्य वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो मूल ग्रंथ जो षटखंडागम है उसकी यह टीका है, जिसकी रचना मूल ग्रंथ की भगवान पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने की हुई है। अभी हम ये दूसरी बार का अपना जो धवला प्रवचन है उसमें हम पृष्ठ संख्या 53 पर आ गए। 53 मंगल संबंधी बात चल रही थी। पहले हमने मंगल शब्द के ऊपर उसका धातु निक्षेप नय, उसके बाद वो एकार्थवाचिक शब्द यानी एकार्थ निरुक्ति और अनुयोग देखे थे। अनुयोग भी 6 प्रकार के देखे थे, उसमें देखा था उसका निर्देश स्वामी साधन, उसके बाद अधिकरण स्थिति और विधान, ये भेद से 6 हमने देखे थे। उसके बाद हमने अभी ये जो मंगलाचरण यहाँ सूत्र बताया है नमो अरिहंताणं आदि नमोकार मंत्र, उसका अरिहंतों का सिद्धों का आचार्यों का उपाध्यायों का और सर्वसाधु का हमने स्वरूप देख लिया है। 53 पृष्ठ पर आए अभी हम शुरू से वहां पहली लाइन से वहां देख रहे हैं। 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करने में इस नमस्कार मंत्र में जो सर्व और लोक पद है लोए सौव, वह अंत दीपक है। हमने देखा ना 3 प्रकार होते हैं, आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक। अतः संपूर्ण क्षेत्र में रहने वाले त्रिकालवर्ती अरिहंत आदि देवताओं को नमस्कार करने के लिए उन्हें प्रत्येक नमस्कारात्मक पद के साथ जोड़ लेना चाहिए। अने नमो लोए सौ अरिहंताणम, नमो लोए सौ सिद्धाणम, नमो लोए सौ आयरियाणम, नमो लोए सौ वज्रायाणम, नमो लोए सौ साहूणम। इसके कहते ये सर्वत्र लागू हो जाता है। इस पर शंकाकार पूछते हैं, जिन्होंने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया है ऐसे अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करना योग्य है, किंतु आचार्य अधिक 3 परमेष्ठियों ने आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं किया है, यानी वो परिपूर्णता नहीं है, इसलिए उनमें देवपना नहीं आ सकता, अतएव उन्हें नमस्कार करना योग्य नहीं है, ऐसा प्रश्न है। उसका समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने अपने भेदों से अनंत भेद रूप रत्नत्रय ही देव है। कितने भेद रूप ले है? अनंत भेद, अतएव रत्नत्रय से युक्त जीव भी देव है, अन्यथा यानी यदि रत्नत्रय की अपेक्षा देवपना न माना जाए तो संपूर्ण जीवों को देवपना प्राप्त होने की आपत्ति आ जाएगी। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि आचार्य आदि भी रत्नत्रय के यथा योग्य धारक होने से, यानी अन्य किसी जीव को परमेष्ठी में नहीं शामिल किया, आचार्य क्योंकि उन्होंने यथा योग्य रत्नत्रय प्राप्त कर लिया है इसलिए उनको देव कहते हैं। क्योंकि अरिहंतादिक से आचार्यादिक में रत्नत्रय के सद्भाव की अपेक्षा कोई अंतर नहीं। सद्भाव लिया, उसका कितने क्वांटिटी कितने डिग्री में वो नहीं लिया, इनके भी रत्नत्रय उनके भी रत्नत्रय। अर्थात जिस तरह अरिहंत और सिद्धों के रत्नत्रय पाया जाता है, उसी प्रकार आचार्य आदि के भी रत्नत्रय का सद्भाव पाया जाता है। इसलिए आंशिक रत्नत्रय की अपेक्षा इनमें भी देवपना बन जाता है।
अब वैसे देखा जाए तो रत्नत्रय की अपेक्षा से चौथे और पांचवें गुण स्थान वर्ती भी जीव है, एक बात। और दूसरी बात, आपका कहना है कि आप कह रहे हैं शास्त्र का कि रत्नत्रय की सद्भाव की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है, तो वो कैसा मतलब फिर चौथे और पांचवें को क्यों छोड़ा?
ये मुख्यता लिए ना आचार्य, क्योंकि परमेष्ठियों में उनको शामिल कर दिया है।
नहीं, उनको अभी हम भी जो
यहाँ मंगलाचरण की बात चल रही है,
हम पांच नमस्कार बोलते हैं उनमें अरिहंत आचार्य उपाध्याय को और देव साधु को देव बोल के नमस्कार करते हैं या उनके पद को नमस्कार करते हैं?
पद को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वहाँ रत्नत्रय और वितरागता इतनी प्रचुरता में है, पूर्ण नहीं है फिर भी प्रचुरता बहुत है, एक तो ये बात हुई। और यहाँ आचार्य आदि को भी भगवान कहने की प्रथा, तो है भगवान हम कहते हैं, भगवान कुनकुंदाचार्य देव हम कहेंगे
की अपेक्षा से।
हाँ, भविष्य की भी अपेक्षा है, उनका पद इतना उच्च है कि उनको भी भगवान कहने की पद्धति है, परंतु चौथे पांचवें गुणस्थान वाले को अभी नहीं कह रहे हैं। उसमें वो अभी शुरुआत है, शुरुआत हुई है तो निश्चित रूप से वो देवपना को प्राप्त होने ही वाले।
उन्होंने जो बताया कि रत्नत्रय की सद्भाव की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं,
बराबर है,
तो फिर इनके भी तो रत्नत्रय है।
बिल्कुल, हम वैसे देखा जाए तो इवन दूसरे गुणस्थान से लेकर नहीं, यहाँ कौन से पांच में से की बात चल रही, यहाँ पांच परमेष्ठियों की ही बात चल रही, इसलिए आचार्य अधिक का ये बात आपको अप्लाई करना है चौथे पांचवे को तो कर सकते हैं।
रत्नत्रय में कोई भेद नहीं ऐसा कहा, तो चौथे पांचवे वाले को रत्नत्रय है कि नहीं?
वैसे यहाँ पर आगे जाके उनको इस विषय में वो नहीं है, इसलिए उसका नाम नहीं लिया।
हाँ।
आगे चलकर उनको भी चौथे पांचवे वाले को भी प्रवचन कहा है, प्रवचन भक्ति जब कहते हैं तो चौथे पांचवे गुणस्थान वर्ती जीवों को प्रवचन कह दिया है, देवला ने ही कहा है। यदि जो विषय चलता है उसके अनुसार उनका नाम लिया है,
नहीं नहीं उसकी अपेक्षा से।
वैसे दूसरे गुणस्थान से लेकर आगे के सभी जीवों को वो जिन शब्द भी कहते हैं, जिन शब्द दूसरे गुणस्थान वर्ती को भी कहा है, क्योंकि अभी वो जिनत्व प्रकट होने वाला ही है, जहाँ जो विषय है उसके लगते हुए की बात है। यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाना है तो हम उस अपेक्षा सहित ले सकते हैं।
मेरा इतना ही मार्ग समझना था कि रत्नत्रय की अपेक्षा से उन्होंने कंपैरिजन की है,
बिल्कुल सही है।
हाँ, और
वही मैं कह रही हूँ,
पांच में वो
हाँ,
नहीं,
पांच में ये तीनों पर लगा रहे।
हाँ।
पांच की ही बात है, अन्य की बात यहाँ नहीं है, इसलिए उन तीनों का नाम लिया। पेज नंबर 53 चल रही, यह अंत्य दीपक की बात अभी हमने देख ली है, अब नीचे का पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। आचार्यादिक और सिद्ध परमेष्ठी के सम्यक दर्शनादिक रत्नों में कारण कार्यपने से भी भेद नहीं है, क्योंकि आचार्यादिक में स्थित रत्नों के अवयवों के रहने पर ही तिरोहित अर्थात कर्मपटलों के कारण पर्याय रूप से अप्रगट। नीचे का पैराग्राफ पढ़ रही हूँ मैं,
बीच का पैराग्राफ रहेंगे।
अच्छा, नीचे का रहे, नीचे से दूसरा पढ़ेंगे, पहले उसको पढ़ेंगे। यहाँ क्या है, पहले वाले अंडरलाइन है सारे, इसलिए लगता है पढ़ लिया हमने। हाँ, आचार्य आदि परमेष्ठियों में, पेज नंबर 53 नीचे से दूसरा पैराग्राफ, आचार्य आदि परमेष्ठियों में स्थित तीन रत्नों का सिद्ध परमेष्ठी में स्थित रत्नों से भी भेद नहीं है। यदि दोनों के रत्नत्रय में सर्वथा भेद मान लिया जावे,
सर्वथा
हाँ, तो आचार्यादिक में स्थित रत्नों के अभाव का प्रसंग आ जाएगा, यानी वहाँ जो रत्नत्रय उसका अभाव अभाव होकर फिर सिद्धों का रत्नत्रय प्रकट होगा, ऐसा कहेंगे। आचार्यों का रत्नत्रय भिन्न प्रकार का है और सिद्धों का रत्नत्रय भिन्न प्रकार का है, सर्वथा भेद मानेंगे तो आचार्य से फिर जब अर्यंत सिद्ध बने तो उनका रत्नत्रय का अभाव हुआ और दूसरा रत्नत्रय प्रकट हुआ, ऐसा मानना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है, उनको है ही नहीं, अभाव हो गया।
वही तो, अर्थात जब आचार्य जी के रत्नत्रय सिद्ध परमात्मा के रत्न से भिन्न सिद्ध हो जावेंगे तो आचार्य जी के रत्न ही नहीं कहलावेंगे, क्योंकि वे थे ही नहीं और फिर उनका प्रकट हुआ, ऐसा भी मानना पड़ेगा। आचार्यादिक और सिद्ध परमेष्ठी के सम्यक दर्शनादिक रत्नों में कारण कार्यपने से भी भेद नहीं है, यानी उनमें कारण कार्य का तो भेद होगा। तो कहते क्योंकि आचार्यादिक में स्थित रत्नों के अवयवों के रहने पर ही, यानी आचार्यादिकों में रत्नोत्रय के अवयव है और वहां पूर्णता है, तो यहाँ अवयव है तभी तो वो रहने पर ही तिरोहित अर्थात कर्म पटलों के कारण पर्याय रूप से अप्रकट दूसरे रत्नावयों का अपने आवरण कर्म के अभाव हो जाने के कारण आविर्भाव पाया जाता है। यहाँ ये बात कह रहे हैं आचार्यों में भी, आचार्यादिक में यानी साधुओं में सभी रत्नत्रय है, वो अंशिक है इसलिए उसको अवयव कहा, ये अंशिक रत्नत्रय है तो कुछ अप्रकट है, रत्नत्रय के कुछ अवयव प्रकट है कुछ अवयव अप्रकट है, अप्रकट है यानी वहां उसके संबंधी आवरण कर्म है, यदि वो नहीं होते। देखो देख फिर से पढ़ती हूँ मैं नीचे से तीसरी लाइन, आचार्यादि में स्थित रत्नों के अवयवों के रहने पर ही, यानी वो अवयव वहां है और कुछ तिरोहित है, तिरोहित है ने कर्म पटलों के कारण पर्याय रूप से अप्रकट है, तो ऐसे रत्नों के अवयव है तभी तो दूसरे रत्नावयवों का यानी जो अभी जो तिरोहित है उनका अपने आवरण कर्म के अभाव हो जाने के कारण आविर्भाव पाया जाता है। कुछ अवयव प्रकट है, कुछ अंश प्रकट है, बाकी अंश कर्मों के पटलों से आवृत है, वो आवरण का नाश होने पर वो भी प्रकट हो जाते हैं। अर्थात जैसे जैसे कर्म पटलों का अभाव होता जाता है वैसे ही अप्रकट रत्नों के शेष अवयव अपने आप प्रकट होते जाते हैं, इसलिए उनमें कारण कार्यपना भी नहीं बन सकता। इसी प्रकार आचार्यादिक और सिद्धों में परोक्ष और प्रत्यक्ष जन्य भी भेद नहीं है, यानी रत्नत्रय में परोक्ष प्रत्यक्ष का तो भेद होगा, तो कहते वैसा भी नहीं क्योंकि वस्तु परिच्छित्ति की अपेक्षा दोनों एक है। वस्तु परिच्छित्ति यानी वस्तु संबंधी ज्ञान, उसका केवल एक ज्ञान के अवस्था भेद से भेद नहीं हो सकता, यानी मात्र ज्ञान की अवस्था भेद से भेद नहीं मान सकते हम उन्हें। यदि ज्ञान में उपाधिकृत अवस्था भेद से भेद माना जावे तो निर्मल और मलिन दशा को प्राप्त दर्पण में भी भेद हो जाएगा। इसी प्रकार आचार्यादिक और सिद्धों के रत्नों में अवयव और अवयवी जन्य भी भेद नहीं है, क्योंकि अवयव अवयवी से सर्वथा अलग नहीं रहते हैं। यानी अवयव अवयवी अलग अलग है ऐसा तो मानना पड़ेगा, तो कहते कि वो उससे सर्वथा अलग नहीं है, इसलिए सर्वथा भेद नहीं हो सकता। अब फिर शंकाकार पूछते हैं, संपूर्ण रत्न अर्थात पूर्णता को प्राप्त रत्नत्रय ही देव है, रत्नों का एक देश देव नहीं हो सकता, यानी आचार्य जी क्योंकि आप देव नहीं कह सकते हो क्योंकि वो एक देश रत्नत्रय है, उनमें पूर्णता नहीं है, उसका समाधान ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि रत्नों के एक देश में देवपना का अभाव होने पर रत्नों की समग्रता में भी देवपना नहीं बन सकता। अर्थात जो कार्य जिसके एक देश में नहीं देखा जाता वह उसकी समग्रता में कहाँ से आ सकता है, यानी उसके अंश में नहीं होगा तो पूर्ण में कहाँ से आएगा, इसलिए वहां पर भी देवपना है, ये कहना चाहते हैं। शंका, आचार्यादिक में स्थित रत्नतय समस्त कर्मों के क्षय करने में समर्थ नहीं हो सकते क्योंकि उनके रत्न एक देश है। उसका समाधान, यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि जिस प्रकार पलाल राशि का दाह रूप, ये पूरा पढ़ते फिर इसका अर्थ बताती हूँ, अग्नि समूह का कार्य अग्नि के एक कण से भी देखा जाता है। कार्य अग्नि का है, चिंगारी वो भी जलाने का कार्य करती है, पलाल राशि यानी वो गवता की गंजी गड्ढा बहुत बड़ा,
इंग्लिश में उसको हस्क कहते हैं,
हस्क का पलाल राशि ने
हस्क
वो तृण जो सूखा हुआ तृण है उसका बहुत ढेर कर देंगे हम, उसको पलाल राशि कहा। यानी पलाल राशि का दाह रूप अग्नि समूह, यानी उसको जलाया तो वो पूरा बहुत बड़ी अग्नि है वो, तो ये अग्नि समूह है। उसका कार्य अग्नि के एक कण से भी देखा जाता है। कार्य क्या करे, जलाने का, बोले भले वो अग्नि का समूह हो या अग्नि की चिंगारी हो, जलाने का जो कार्य वो दोनों का समान है। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना चाहिए, इसलिए आचार्यादिक भी देव है यह बात निश्चित हो जाती है। अब दूसरी शंका पूछ रहे हैं, सर्व प्रकार के कर्मलेप से रहित सिद्ध परमेष्ठी के विद्यमान रहते हुए, सिद्ध परमेष्ठी आठों ही कर्मों के मल से रहित है, इससे होते हुए अघातिया कर्मों से लेप से युक्त अरिहंतों को आदि में नमस्कार क्यों किया जाता है? वो तो आठों कर्मों से मुक्त है सिद्ध भगवान, अरिहंत तो चार ही कर्मों से मुक्त है, चार तो अभी अघातिया विद्यमान है, उनको पहले नमस्कार क्यों किया, ये उनका प्रश्न है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि सबसे अधिक गुण वाले सिद्धों में श्रद्धा की अधिकता के कारणभूत, ये भूत शब्द डालना पड़ेगा, कारण का अर्थ होता है कारणभूत, इसका अर्थ नहीं समझे, सिद्ध भगवान है तो सिद्ध भगवान कहाँ पर है, ऊपर लोकाग्र में है, अरूपी है, जैसे अरिहंत तो हम साक्षात देखते भी हैं, तीर्थंकरों का साक्षात दर्शन करने वाले होंगे ना, उनके जमाने के जो कुछ है वहाँ समोचरण में जाने वाले कितने ही जीव, देव असंख्यात होते हैं, तीर्यंश मनुष्य कितने ही होते हैं, तो वे तो अरिहंतों को साक्षात देखते हैं, सुनते हैं, उनकी वाणी भी सुनती है, तो सिद्धों का स्वरूप बताया किसने, अरिहंतों ने बताया, ये कह रहे हैं। फिर मैं ये वाक्य पढ़ती हूँ, देखो, सबसे अधिक गुण वाले सिद्धों में श्रद्धा की अधिकता के कारणभूत, यानी सिद्ध ये उत्कृष्ट पद वाले हैं, उनके कारणभूत कौन है, अरिहंत परमेष्ठी ही है, अर्थात अरिहंत परमेष्ठी के निमित्त से ही अधिक गुण वाले सिद्धों में सबसे अधिक श्रद्धा उत्पन्न होती है, कि उनके कारण ही उनका स्वरूप समझ में आया। अथवा और दूसरी बात बता रहे, अरिहंत परमेष्ठी न होते तो हम लोगों को आप्त आगम और पदार्थ का परिज्ञान नहीं हो सकता था, क्योंकि हमें जो लाभ हुआ है, उपदेश मिला है, मोक्ष मार्ग पर हम आरूढ़ हो सकते हैं, उसके लिए तो तीर्थंकरों का उपदेश ही हमें मिला है मूल में, क्योंकि उन्हीं को आप्त कहते, सिद्धों को आप्त नहीं कहते, तो ये सारा ही जो पदार्थों संबंधी परिज्ञान है, परिपूर्ण ज्ञान हमें हो सकता है, वो अरिहंत परमेष्ठी न होते तो हमें नहीं हो सकता, किंतु अरिहंत परमेष्ठी के प्रसाद से हमें इस बोध की प्राप्ति हुई है। उनका प्रसाद यानी कुछ ऐसा यहाँ प्रसाद बांटते वो वाली बात नहीं है,
मेहरबानी
हाँ उनका उपकार है। इसलिए आगे लिखा है, उपकार की अपेक्षा भी आदि में अरहंतों को नमस्कार किया जाता है। यदि कोई कहे कि इस प्रकार आदि में अरहंतों को नमस्कार करना तो पक्षपात है, इस पर आचार्य उत्तर देते हैं कि ऐसा पक्षपात दोषोत्पादक नहीं है, किंतु शुभ पक्ष में रहने से वह कल्याण का ही कारण है। तथा द्वैत को गौण करके अद्वैत की प्रधानता से किए गए नमस्कार में द्वैत मूलक पक्षपात बन भी तो नहीं सकता। यानी पक्षपात, देखो इसका विशेषात बता रहे, पक्षपात यानी एक अच्छा एक थोड़ा कम, ऐसी बात तो यहाँ है नहीं। पहला नमस्कार किया इसलिए वो उनको बहुत हमने मान दिया, उनको नहीं मान दिया, यही बात नहीं हो सकती। देखो पक्षपात वही संभव है, वही ने वहीं पर संभव है जहां दो वस्तुओं में से किसी एक की ओर, ए ओर करना शब्द, किसी एक की ओर अधिक आकर्षण होता है। परंतु यहां परमेष्ठियों को नमस्कार करने में दृष्टि प्रधानतया गुणों की ओर रहती है, अवस्था भेद की प्रधानता नहीं है। यानी यहाँ गुणों को मुख्य करके उनको नमस्कार किया है, जो वितरागता सर्वज्ञता है, और अवस्था भेद की यहाँ मुख्यता नहीं है, इसलिए यहाँ पक्षपात किसी प्रकार भी संभव नहीं है। अथवा कहकर और भी बता रहे हैं, अथवा
ऊपर जो ऐसा लिखा है,
हाँ हाँ
अभी विशेषार्थ पढ़ रहे हैं उसके ऊपर की पहले,
हाँ
सेकंड लाइन, किंतु शुभ पक्ष में रहने से वह कल्याण का ही कारण है, तो क्या बताएं, समझ में नहीं है।
देखो कोई कहे कि, देखो यदि कोई कहे कि इस प्रकार आदि में अरहंतों को नमस्कार करना तो पक्षपात है, आचार्य उत्तर देते कि ऐसा पक्षपात दोषोत्पादक नहीं है, किंतु शुभ पक्ष में रहने से वह कल्याण का ही कारण है। यानी वहां तो नमस्कार ही तो कर रहे हैं ना,
यानी नमस्कार करने रूप जो कोई शुभ भाव है,
ये शुभ पक्ष ने शुभ भाव लेना है कि ये शुभ पक्ष ने वो तो कल्याण वाला लेना है, क्योंकि अभी मंगल के अर्थ में भी हमने शुभ शब्द लिया, पुण्य पवित्र ये सारे शब्द मंगल के अर्थ में, शुभ भी आया था ना उसमें क्या, नहीं आया था ये पुण्य ही आया था, पुण्य पवित्र पूत ये शब्द तो आए थे। एक मिनट, एक अर्थवाची शब्द कहाँ पर लिखे हैं, पेज नंबर 32, हाँ लास्ट लाइन, मंगल के एकार्थवाचक नाम कहते हैं, मंगल पुण्य पूत पवित्र प्रशस्त शिव शुभ कल्याण भद्र और सौख्य। यहाँ शुभ शब्द भी वो कल्याण के अर्थ में, मंगल के अर्थ में ले सकते हैं। यहाँ लिया ना, देखो कहाँ
नौ शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं, मंगल प्लस नाइन टेन,
हाँ यानी शुभ पक्ष में मंगल पक्ष में रहने से वह कल्याण का ही कारण है। उसी का यानी शुभ ने शुभ भाव इतना ही नहीं लेना वहां पर, क्योंकि कल्याण का कारण बताए ना। और ये भी बताया द्वैत को गौण करके अद्वैत की प्रधानता से किए गए नमस्कार में द्वैत मूलक पक्षपात बन भी तो नहीं सकता। मैंने वह अवस्था को गौण कर दिया है। इसीलिए विशेषांक में बता दिया ना, गुणों की प्रधानता है, अवस्था भेद की प्रधानता नहीं है, इसलिए पक्षपात भी संभव नहीं है। आगे पढ़े विशेषांक के नीचे का पैराग्राफ, अथवा आप्त की श्रद्धा से ही आप्त आगम और पदार्थों के विषय में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है। देखो क्या कहना चाहते हैं, आप्त यानी अरिहंत भगवान जो सर्वज्ञ वितरागी है, यानी सबसे पहले में पहले जिसने ये मार्ग बताया उनकी सिद्धि करते हैं। हमारे सारे ही जो न्याय शास्त्र है, जो अन्य अन्य शास्त्र है, उसमें पहले में पहले सर्वज्ञ की सिद्धि की है, आप्तों की सिद्धि की है। क्योंकि हर एक जो मत होते हैं, अलग अलग दर्शन, उनके अपने अपने आप्त का स्वरूप अलग अलग बताते हैं। तो आप्त की जब तक श्रद्धा नहीं है तब उनके वचन पर कौन श्रद्धा करेगा। तो सबसे पहले ये जो मार्ग बताने वाले, ये पूरा उपदेश देने वाले जो आप्त है, अरिहंत भगवान है, उनका स्वरूप निश्चित करते हैं। इसलिए आप्त की श्रद्धा हो तो उनकी वाणी की श्रद्धा हो जाती है, उन्होंने बताए हुए पदार्थों की श्रद्धा हो जाती है। देखो फिर से, अथवा आपकी श्रद्धा से, आप्त की श्रद्धा से ही आप्त आगम और पदार्थों के विषय में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है। बार बार कहते हैं ये बात किसने बताई, तो सर्वज्ञ भगवान ने बताई। तो सर्वज्ञ का पहले स्वरूप निश्चित करना चाहिए, क्योंकि उनकी बताई हुई बात क्यों सत्य होगी। एक तो वो त्रिकाल यानी तीन काल के, तीन लोक अलोक सबके, यानी सभी द्रव्यों के गुण पर्यायों को युगपत एक समय में जानते हैं। इतना ही नहीं, वो पूर्ण वितरागी। एक तो झूठा बोलने का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ है, ना ही अज्ञान है और ना ही कोई कषाय है। कषायवश जीव झूठ बोलेगा या कुछ मालूम नहीं तो भी हो सकता है झूठ बोल जाए, परंतु यहाँ उनका सर्वज्ञ और वितरागी जो स्वभाव है, स्वरूप है और वितरागता है, बिना इच्छा के ही वो सहज रूप से ये उपदेश हमें प्राप्त होता है। तो पहले में पहले सर्वज्ञ का स्वरूप हम निश्चित करते हैं, तो उनकी वाणी का भी हमें बिल्कुल दृढ़ विश्वास हो जाता है। तो उन्होंने ही बताया आप्त का स्वरूप क्या है, आगम का क्या है स्वरूप, और पदार्थ कैसे, उनके विषय में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है। इस बात के प्रसिद्ध करने के लिए भी आदि में अरिहंतों को नमस्कार किया गया है। क्योंकि सबसे में पहले आप्त की सिद्धि होती है, क्योंकि आप्त के द्वारा ही हमें ये सब मालूम हो गया है। अब कहां भी है कहकर, ये 34 नंबर का हम श्लोक पढ़ेंगे यहाँ पर। जस्संतियम धम्मपहम निगच्छे तस्संतियम वेनयम पौंजे सकारये तम चिरपंचेन कायेन वाया मनसा च निशम। ये अलग है उसका राग मेरे ख्याल से। जस्संति अंधम अपहम निगच्छे तस्संति अम वेनयम पहुंजे सकारये तम सिरपंचेन कायेन वाया मनसा च निशम। अर्थ देखते हैं, नीचे लिखा है जिसके समीप धर्म मार्ग प्राप्त करे, यानी जिसके द्वारा हमको धर्म मार्ग मिला है, मोक्ष मार्ग का उपदेश मिला है, उसके समीप विनय युक्त होकर प्रवृत्ति करनी चाहिए। तत्संतियम वेणयम पौंजे तथा उसका शिरपंचक, हमें पंचांग नमस्कार जिसको कहेंगे, अर्थात मस्तक, दोनों हाथ और दोनों जंघाएं, इन पंचांगों से तथा काय वचन और मन से निरंतर सत्कार करना चाहिए। ये विनय की बात है। ऐसे भी लौकिक में भी कहते ना, विद्या विनय न शोभते। जिसके द्वारा ये हमें प्राप्त हुआ है, ये भले हम द्रव्यान योग में तो कहते कि हर एक द्रव्य के ज्ञान की अपनी पर्याय से होता है, परंतु निमित्त रूप से जिनके द्वारा हमको प्राप्त हुआ है, तो उनके समीप विनय युक्त होकर प्रवृत्ति करनी चाहिए। यहाँ 34 नंबर डालना, वो डाला नहीं है मूल में, आपने लिखा होगा पहले। इस तरह मंगल के कारण का वर्णन समाप्त हुआ, अब निमित्त का कथन करते हैं। नहीं समझे कारण याने क्या कहा इसको? पहले हमने क्या देखा था? 6 बातें करके फिर उसके बाद हम ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। हाँ, 8 नंबर का पेज निकालो। हाँ, मंगल निमित्त हेतु वगैरह की बात है ना। अभी मंगल की बात बताइए, यानी वो मंगल किया, उसके मंगल पर वो सारे धातु निक्षेप नए एकार्थवाची निरुक्ति और अनुयोग सब लगाए, उसके बाद ये जो सूत्र बताया था उसका पूरा अर्थ किया। अब कहते हैं निमित्त को बताना है, यानी ये ग्रंथ किसके निमित्त से लिखा गया ये बात यहाँ बताएंगे। अभी वहां पर भी हमने लिख के रखा था, 8 पेज पर मंगल है, निमित्त है 55 पर, हेतु है 56 पर वगैरह वगैरह, उसमें मैंने डाल के रखा है। 8 नंबर के पेज पर जो लिखा है ना मंगल हेतु निमित्त, वहाँ पेंसिल से हमने लिखा हुआ था
56। हाँ,
56 पर हेतु है, परिमाण है 61, नाम भी 61 और कर्ता भी 61। हाँ, तो यहाँ भी हम पढ़ेंगे। 55 पेज पर है हम कि मंगल का भी वर्णन समाप्त हुआ, अब निमित्त का कथन करते हैं। ये पेज 8 से हमने ग्रंथ का निमित्त अब यहाँ बताने वाले हैं। शंका, यहाँ पर किसके निमित्त का कथन किया जाता है? उसका समाधान, यहाँ पर सूत्रावतार, सूत्र ने ग्रंथ सूत्रात्मक है ना, अर्थात ग्रंथ के प्रारंभ होने के निमित्त का वर्णन किया जाता है। ये ग्रंथ लिखना क्यों, किसके निमित्त से हुआ, ये ग्रंथ का निमित्त कौन है, उसकी बात यहाँ बता रहे। फिर यहाँ शंका पूछते हैं, यह कैसे जाना जाता है कि यहाँ पर सूत्रावतार के निमित्त का कथन किया जाता है अन्य का नहीं? तो कहते यह बात प्रकरण से जानी जाती है। अभी मंगलाचरण किया है तो यहाँ पर ये निमित्त का कथन किया जाता है अन्य का नहीं, ये कैसे जाना? क्योंकि प्रकरण क्या चल रहा है अपना, मंगलाचरण किया है, मंगल बताया है, तो मंगल के बाद निमित्त ही है। जैसे हाँ,
सूत्रावतार अभी हो रहा है यानी ये शास्त्र लिखा जा रहा,
शास्त्र लिखना शुरू किया है, मंगलाचरण हुआ है, तो मंगल के बाद तो निमित्त का ही कथन होना चाहिए, ये निमित्त का ही प्रकरण है। ये नहीं मालूम, वो बीरबल की कथा मालूम है कि नहीं मालूम? नहीं मालूम, बादशाह बीरबल की बहुत कथाएं सुनी होगी आपने। तो एक दिन सुबह सुबह बादशाह बाहर आया और कोई वहां नौकर था, उसको बताए बुला कर लाओ,
बुलाओ
बुलाओ। तो बुलाओ क्या, तो वो नौकर घबरा गया, वो कैसे पूछे किसको बुलाओ, जाओ जल्दी बुलाओ कहीं, तो घबरा गया। तो उसको मालूम था बीरबल ही अभी अपने को त्राता है, तो उसके बाद दौड़ के बीरबल के पास चला गया। तो वो जहां पहाड़ ने मेरे बुलाओ कहकर आज्ञा दी, मैं किसको बुलाऊ, उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। तो बीरबल ने सोचा और उसको पूछा, वो क्या कह रहे, क्या कर रहे थे, बुलाओ कहां, वो क्या कर रहे, कहते ऐसा ऐसा करते बुलाओ करके। तो नाई को बुला के ले जाओ, जा तो नाई को लेके चला जा,
सिचुएशन देख।
हाँ, सिचुएशन देख। हाँ,
तो अभी सिचुएशन मंगलाचरण हुआ
तो अभी, क्योंकि हम घर में भी कहते ना, अरे वो किधर है, वो किधर है, क्या किधर है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चाहिए, अभी बच्चे हो या कोई पति हो, क्या वो ये किधर गया, तो क्या किधर गया वो समझ। देखो, जैसे भोजन करते समय सैंधव लाओ, इस प्रकार के वचन से सेंधे नमक का ही ज्ञान होता है। ऐसा क्यों कहा, सैंधव तो हम उसी को कहते, पर हमको मालूम नहीं सैंधव शब्द का और भी एक अर्थ होता है, घोड़ा। तो भोजन करते समय घोड़े का सब कुछ तो सेंधे नमक के लिए यहाँ एक ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर ग्रंथावतार के निमित्त का ही कथन किया जा रहा है, यानी प्रकरण क्या है उसको देखकर हम किसका निमित्त हो सकता है। तो अभी जो प्रकरण है ग्रंथावतार होने जा रहा है तो उसके निमित्त का यहाँ कथन। एक ग्रंथ रचना का निमित्त क्या है उसकी बात यहाँ बताएंगे। तो यहाँ कहते हैं बद्ध बंध बंध के कारण मुक्त मोक्ष और मोक्ष के कारण। क्या कहा? बद्ध ने बंधा हुआ उसको बद्ध कहते हैं, बंधा हुआ है वो बंध और बंध के कारण। वैसे ही मुक्त जिसे वहां बंध लिया हुआ है यहां मोक्ष और मोक्ष के कारण। इन छह तत्वों को निक्षेप नए प्रमाण और अनुयोग द्वारों से हमने देखा था ना, वो निक्षेप नए वो युक्ति और वैसे बातें बताई थी। तो निक्षेप नए प्रमाण और अनुयोग द्वारों से भली भांति समझकर भव्यजन उनके ज्ञाता बने, इसलिए यह सूत्र ग्रंथ अर्थ प्ररूपणा की अपेक्षा तीर्थंकर से और ग्रंथ रचना की अपेक्षा गणधर देव से अवतीर्ण हुआ है। यानी हमने रचा ऐसा नहीं कह रहे, ये क्या कह रहे हैं फिर से? कौन से छह तत्वों का यहाँ निरूपण चलेगा? बद्ध बंध और बंध के कारण, मुक्त मोक्ष और मोक्ष के कारण। इन जो छह तत्वों का क्या क्या देखने, उसमें निक्षेप है, नए है, प्रमाण है और अनुयोग द्वारा। इन सभी से भलीभांति समझकर भव्यजन उनके ज्ञाता बने, इसलिए इस सूत्र ग्रंथ अवतरण हुआ है। तो मूल इसके कर्ता तो तीर्थंकर देव है और ग्रंथ रचना की अपेक्षा कहे तो गणधर देव है ग्रंथ रचना का निमित्त। अब शंका, द्रव्य और भाव से अकृत्रिम होने के कारण सर्वदा यानी हमेशा एक रूप से अवस्थित, अवस्थित यानी कायम वैसा का वैसा, सर्वदा एक रूप से अवस्थित श्रुत का अवतार कैसे हो सकता है? क्या कहते हैं? ये तो अनादि अनंत है ना कहते हैं, और द्रव्य भाव रूप से भी अकृत्रिम है तो उसका अवतार यानी नया उत्पन्न हुआ पैदा हुआ ऐसा कैसे कह सकते हैं? समाधान, यह शंका तो तब बनती है जब यहाँ पर द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा होती है। ये जो कोई कथन होता है वो नय की अपेक्षा लगती है उसमें, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा न कोई उत्पन्न होता है न कुछ का व्यय होता है, वो तो अनादि अनंत एक रूप कायम रहता है। परंतु यहाँ पर पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा होने से श्रुत का अवतार तो बन ही जाता है। 35 नंबर जो ऊपर श्लोक है ना उसको पढ़ेंगे। छद्दौ अणवपयत्थे सुयणाणा इच्छतिपतेन पश्यन्तु बहुजीवा यसुय रविणो हवे उदौ। भव्य जीव श्रुत ज्ञान रूपी सूर्य के दीप्त तेज से छह द्रव्य और नौ पदार्थों को देखे अर्थात भली भांति जाने, इसलिए श्रुत ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ है। ये द्रव्य श्रुत की बात करें ना, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत सूत्र ग्रंथ जिसकी है उसकी बात चल रही है यहाँ पर, उसी को श्रुत कह दिया। तो हमने निमित्त देखा, ये जो छह प्रकार बताए बद्ध बंध बंध के हेतु, मुक्त मोक्ष मोक्ष के हेतु, इनका नए निक्षेप प्रमाण और अनुयोग द्वार, इनके द्वारा अच्छी तरह से भव्यजन समझे इसके लिए इस ग्रंथ का अवतार हुआ है।
यहाँ श्रुत ज्ञान को सूर्य का,
हाँ शुद्ध ज्ञान रूपी सूर्य क्योंकि ये जी हम जो देख रहे हैं वो तो अपने शुद्ध ज्ञान से ही इसको जानेंगे, छह पदार्थ, ये छह द्रव्य नौ पदार्थों को। अब हेतु का कथन किया जाता है, ग्रंथ का हेतु, ग्रंथ का निमित्त था, ये ग्रंथ का हेतु चल रहा है। तो कहते हेतु दो प्रकार का है, एक प्रत्यक्ष हेतु और दूसरा परोक्ष हेतु। शंका, यहाँ पर किसके हेतु का कथन किया जाता है? तो कहते यहाँ पर सिद्धांत के अध्ययन के हेतु का कथन किया जाता है, यानी हेतु यानी उसका क्या फायदा है? ये जो आपने देखा ना, बहुव्यजन ज्ञाता बने इसलिए इसकी रचना हुई है। अब कहते हैं कि इसमें हेतु क्या है, क्यों जानना इसको, क्या फायदा, कहते हैं ना, तो उसका हेतु क्या है? तो सिद्धांत के अध्ययन के हेतु यहाँ बताएंगे, यानी ग्रंथ की रचना क्यों हुई और वो ग्रंथ जानने का फल क्या मिलेगा, यानी हेतु क्या है उसका, उसको बता रहे हैं। हाँ वही वही सिद्धांत के अध्ययन के हेतु, कारण ये नहीं है, वो निमित्त में आ गए वो। अब यहाँ हेतु है ना उसका, ये कहने का हेतु क्या है, फल क्या मिलेगा, कोई इसको पढ़ेगा तो उसको क्या लाभ मिलेगा, ये कहना चाहते हैं। उन दोनों प्रकार के हेतुओं में एक बताए प्रत्यक्ष हेतु और दूसरा परोक्ष हेतु। प्रत्यक्ष हेतु दो प्रकार का है, साक्षात प्रत्यक्ष हेतु और परंपरा प्रत्यक्ष हेतु। एक तो प्रत्यक्ष और परोक्ष, प्रत्यक्ष में भी साक्षात प्रत्यक्ष और परंपरा प्रत्यक्ष, उनमें से
यानी हम ऐसा भी समझ सकते हैं क्या?
हाँ,
जैसे पंडित टोडरमल जी ने सब में ज्ञान चंद्रिका आदि पुस्तकें लिखी, तो उस समय जो कोई सुनने वाले पढ़ने वाले होंगे वो साक्षात प्रत्यक्ष हेतु रहा, और अभी 300-200-250 साल बाद
नहीं तो निमित्त में आ जाएगी।
नहीं नहीं वो तो परंपरा प्रत्यक्ष हेतु उसमें लेंगे।
नहीं नहीं, नहीं वो तो निमित्त हुए कि भव्य जनों को इसका लाभ मिले, किसने लाभ मिला उसको परंपरा नहीं कहा। हमें बाद में इसका क्या लाभ मिलेगा, हम इसको पढ़ रहे हैं, हम सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें क्या लाभ मिलेगा? एक तो साक्षात लाभ हो जा रहा है, क्या लाभ है, और कुछ यानी कालांतर से वो परंपरा हेतु उसको कहेंगे, ये पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा? देखो, एक तो साक्षात प्रत्यक्ष हेतु, उनमें से अज्ञान का विनाश, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति, ये जानने का क्या फायदा, कोई पूछते ना क्या फायदा, क्या फायदा, उस विषय संबंधी अज्ञान था, अज्ञान का विनाश और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, यही सबसे बड़ा फल है। और वो साक्षात उसी समय हो रहा है जिस समय हमने इस विषयों को जाना, उसी समय उस संबंधी अज्ञान से हम मुक्त हुए। तो अज्ञान का विनाश और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति, यानी लोगों को लगता है ना ये तो हमने घंटा भर पढ़ा, क्या फायदा हुआ, दुकान में बैठते तो कुछ मिलता ना, ये फायदा हुआ कि अज्ञान का नाश हुआ। देव मनुष्यादि द्वारा निरंतर पूजा का होना, देखो ये टोनरमल जी साहब ने भी समय ज्ञान चंद्रिका में 10 लाभ बताए शास्त्र के अध्ययन के, जाति से पुण्य होता है, ये अन्य जो मानते हैं वगैरह, अज्ञान का नाश होता है, समय ज्ञान की प्राप्ति, कितने 10 एडवांटेजेस बताए उसके, राग आदि का विनाश होता है। अभी इसमें से यहाँ क्या कह रहे हैं, अज्ञान का विनाश, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति, एक ही बात है ना, एक ही नहीं, इसमें एक ही वाक्य में ले लिया दोनों को। देव मनुष्यादि द्वारा निरंतर पूजा का होना, क्योंकि जिसने अध्ययन किया है, जिसको अधिक ज्ञान है, तो अन्य लोग भी उनको मानेंगे, उसके लिए नहीं कोई अध्ययन करा, परंतु वो भी सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। और प्रत्येक समय में असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा का होना साक्षात प्रत्यक्ष हेतु समझना चाहिए। हेतु में क्या लिया, फल, हम उसी की चर्चा करें ना, हेतु यानी फल, देखो ये तो अध्ययन से जो असंख्यात गुणी निर्जरा होगी वो तो सम्य दृष्टियों की होगी और मुख्यतः मुनियों की अपेक्षा से बात यहाँ लिखी है, क्योंकि इसके अध्ययन में राग द्वेष रहित वस्तु के सही स्वरूप को सही ज्ञान हो रहा है और उसमें उपयोग की इतनी एकाग्रता है, उससे उनकी उस काल में निर्जरा भी ज़्यादा होती है और असंख्यात गुणी निर्जरा कहें। ये तो निर्जरा जो है ना, यानी गुणश्रेणी निर्जरा जो कहते कंटिन्यूस, वो पांचवें वाले की होती है, उन्हीं की अपेक्षा मुख्यतः से बताए।
मुझे एक बात बतानी है, यहाँ पर सिद्धांत के अध्ययन का हेतु बता रहे हैं। सिद्धांत के अध्ययन का हेतु,
हेतु यानी फल।
हाँ, तो आगे लिखते हैं साक्षात प्रत्यक्ष हेतु और परंपरा, फिर उसके
परंपरा
आगे लिखते
प्रत्यक्ष
हैं, हाँ। अज्ञान का विनाश, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति, और आगे जो लिखा है देव मनुष्य आदि के द्वारा। अच्छा अच्छा अच्छा, अध्ययन होता ही है, वो तो निरंतर पूजन करते उसकी बात ये है।
जो अध्ययन कर रहा है उनको अन्य देव और जैसे मुनि है और आगम के ज्ञानी है तो अन्य देव और अन्य मनुष्य उनकी पूजा करेंगे।
मुझे ये मेरे मन में ये प्रश्न आया कि देव भी अध्ययन करते होंगे तो वहाँ पर भी ग्रंथ होंगे, ऐसा लगता है, ऐसा अपना बीच में एक पॉइंट निकला था।
ये निरंतर पूजा सिद्धांत की नहीं करनी है, उस जीव की करनी है। वो मुनिराजों को देव भी आकर पूजेंगे ये कह रहे हैं, यानी उनको पूज्यत्व प्राप्त होता है ये कहे अपनी भाषा में, जो अध्ययन करेंगे उनको पूज्यत्व प्राप्त हो रहा है
और उनकी मनुष्यादिक देवगति द्वारा पूजा होगी।
हाँ, अन्य देव मनुष्य उनको पूजेंगे ये कहना चाहिए।
जैसे हमने देखा है कि अनेक मुनियों की पूजन देव भी आके करते हैं।
हाँ,
ऐसा
वैसे लेना, या मुनियों की मुख्यता से ये सब कथन हो रहे हैं। हाँ, शंका, कर्मों की असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से निर्जरा होती है, यह किनके प्रत्यक्ष है? यहाँ प्रत्यक्ष हेतु बताए ना, तो प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष जानने वाले कौन है कर्मों की, हमें निर्जरा हो रही है कि नहीं, हमको तो नहीं दिख रहे कर्म जा रहे क्या आ रहे हैं, हर समय इतने बन रहे वो भी नहीं दिख रहे, जा रहे वो भी नहीं दिख रहे, तो ये असंख्यात गुणी निर्जरा किसको प्रत्यक्ष है ये पूछ रहे हैं, यानी किसके ज्ञान का विषय है ये पूछना चाहते हैं। ऐसी शंका ठीक नहीं है, ये प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए, सादा दंड चाहिए। क्योंकि सूत्र का अध्ययन करने वालों की असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से प्रति समय कर्म निर्जरा होती है, यह बात अवधि ज्ञानी और मनपरे ज्ञानियों को प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होती है, वो प्रत्यक्ष जानते हैं। अब शिष्य प्रति शिष्यादि के द्वारा निरंतर पूजा जाना परंपरा प्रत्यक्ष हेतु, ये कहते हैं, यानी हम अभी शिष्य और प्रति शिष्य, फॉर एग्जाम्पल हम कहें पंडित टोडरमल जी ने इतना अद्भुत कार्य किया है तो हम बारम्बार जब ग्रंथ पढ़ते हैं उनकी बारम्बार याद करते हैं। अभी ये धवला जो है षटखंडागम तो मूल ग्रंथ समझने के लिए वीरसेन आचार्य ने इसकी इतनी रचना की, उसकी टीका रची, तो हम उनको नमस्कार करते हैं, वीरसेन आचार्य को नमस्कार करके हम यहाँ शुरुआत करते हैं। तो ये क्या है, शिष्य और प्रति शिष्यों के द्वारा निरंतर पूजा जाना परंपरा प्रत्यक्ष हेतु। परोक्ष हेतु दो प्रकार का है, एक अभ्युदय सुख और दूसरा नैश्रेयस सुख। अभ्युदय ने लौकिक जो कुछ होता है और नैश्रेयस ने मोक्ष संबंध, इनमें से सातावेदी आदि प्रशस्त कर्म प्रकृतियों के तीव्र अनुभाव के उदय से उत्पन्न हुआ इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंशादि देव संबंधी दिव्य सुख, यानी ग्रंथों का अध्ययन किया है तो उसमें से कुछ पुण्य प्रकृतियां भी बंधी है, तो कहते वहां पर अभ्युदय सुख प्राप्त हो रहा है। और चक्रवर्ती बलदेव नारायण अर्धमंडलिक मंडलिक महामंडलिक राजा अधिराज महाराजाधिराज परमेश्वर यानी तीर्थंकर आदि मनुष्य संबंधी मानुष्य सुख को अभ्युदय सुख कहते हैं।
लौकिक
यानी देव संबंधी दिव्य सुख उसको भी अभ्युदय कहा। और ये जो मनुष्यों में जो कोई विशेष महापुरुष होते हैं कहो या विशेष उनको कुछ पद प्राप्त होता है, इस मनुष्य संबंधी जो मानुष्य सुख को भी अभ्युदय सुख कहा। अब राजा किसको कहना क्या है वो सब बातें आएगी। यानी परोक्ष सुख दो भेद के, एक अभ्युदय सुख और एक मोक्ष सुख। नैश्रेय सुख यानी मोक्ष सुख। इसके लिए नीचे वो तिलोय पन्नति का भी उन्होंने आधार दिया। आगे पढ़ते हैं। अभी हम ये अभी हमने पढ़ा ना राजा महाराजा अधिराजा और क्या क्या सब, उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। क्रम से एक एक श्लोक को पढ़ेंगे हम। 58 पेज पर 36 नंबर अष्टादश संख्यानां श्रेणीनाम अधिपतिर्विनम्राणां राजास्यान् मुकुटधर कल्पतरु सेवमानानां। जो नम्रीभूत 18 श्रेणियों का अधिपति हो, 18 श्रेणियां 37-38 श्लोक में बताएं। कौन सी 18 श्रेणियां होती है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में वो बताए, वो हम बाद में पढ़ेंगे। घोड़ा हाथी रथ उनके अधिपति सेनापति मंत्री श्रेष्ठी वगैरह वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो बताए ना बाद में, ऐसे जो 18 श्रेणियां हैं इन 18 श्रेणियों का अधिपति हो, मुकुट को धारण करने वाला है, करने वाला हो, मुकुटधर कहते उसको, और सेवा करने वालों के लिए कल्प वृक्ष के समान हो। कल्प वृक्ष जैसे मांगे वो दान देता है, वैसे सब देने वाले हैं, उनको तृप्त करने वाले हैं, इसलिए उसे राजा कहते हैं। अभी 18 श्रेणियों की बात यहाँ बता रहे हैं। यहाँ प्रकरण में उपयोगी गाथाएं उद्धृत की जाती है। ये उन्होंने पहले संस्कृत में बताया। अभी ये जो उपलब्ध गाथा है मेरे ख्याल से कहाँ की है, त्रिलोक सार की कहाँ की है, ठीक है पढ़ेंगे हम इसको। हय हत्तिरहाण ही वा सेना वै मंति सेठी दंड वै शुद्ध खत्तिय ब्रह्मण वै सात महयराचेव गणराय मच्च तलवर पुरोही आदप्पिया महामत्ता 18 सेनियो पयायिना मेलिया होंती। यही रुकेंगे, दो है ना एक साथ उसका अर्थ बताए नीचे। घोड़ा हाथी रथ इनके अधिपति, यानी घोड़े के अधिपति हाथियों के अधिपति और रथ के अधिपति, उनको श्रेणियों में लेना ना। घोड़े को नहीं लेना, घोड़े सवारों को लेना, हाथी पर सवार होने वालों को लेना और रथ पर सवार होने वालों को लेना। उनके अधिपति सेनापति मंत्री श्रेष्ठी दंडपति शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य महत्तर गणराज अमात्य तलवर पुरोहित स्वाभिमानी महामात्य और पैदल सेना। ये स्वाभिमानी महामात्य एक शब्द है, पैदल सेना। इस तरह सब मिलाकर 18 श्रेणियां होती है। अथवा कह के उन्होंने और एक 39 नंबर के अलग से बताया, कृतनांग दंड नायक वर्णवन भुक गणे महामात्राश्च मंत्री पुरोहित सेनानी अमात्य तलवर महत्तरा शिवश्रेण्य। ये उन्होंने संस्कृत में बताया है। अथवा हाथी घोड़ा रथ और प्यादे, ये चार सेना के अंग, आपने शायद चतुरंग सेना ऐसा सुना होगा। दंड नायक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण यानी चतुरंग और फिर चार वर्ण, इसको वर्ण कहते हैं ना। फिर वणिकपति गणराज महामात्र मंत्री पुरोहित सेनापति अमात्य तलवर और महत्तर। तलवर का अर्थ होता है कोतवाल, कोतवाल वो प्रवचन सार में भी आया था तलवर शब्द। प्यादे पैदल हाँ, इन्हें पैरों पर चलने वाले। पैदल सेना ऊपर आया था ना, देखो हाँ ऊपर के श्लोक में लास्ट में लिया था 18 नंबर पर पैदल सेना। ये 18 श्रेणी उन्होंने अलग अलग बता दी दोनों में करके। अभी 40 नंबर को पढ़ेंगे ऊपर। पंचशत नरपति नाम अधिराजोधीश्वरो भवति लोके राजसहस्राधिपति प्रतीयते सौ महाराज। लोक में 500 राजाओं के अधिपति को अधिराज कहते हैं और 1000 राजाओं के अधिपति को महाराज कहते हैं। 41 द्विसहस्र राजनाथो मनीषिभिर्वर्ण्यते अर्धमण्डलिकः मण्डलिकश्च तथा स्यात् चतुस्सहस्रावनीशपतिः। पंडित जन मनीषी का ना 2000 राजाओं के स्वामी को अर्धमंडलिक कहते हैं, 1000 राजाओं के स्वामी अधिपति को महाराज कहा, 2000 राजाओं के स्वामी को अर्धमंडलिक कहा और 4000 राजाओं के स्वामी को मंडलिक कहा। 42 बीच पर आते हैं। अष्टसहस्रमहीपति नायक माहुर्बुधा महामंडलिकम षोडश राजसहस्रैर विनम्यमानस् त्रिखंडधरणीशः। बुध जन 8000 राजाओं के स्वामी को महामंडलिक कहते हैं, जिसे 16000 राजा नमस्कार करते हैं उसे 3 खंड पृथ्वी का अधिपति अर्थात नारायण कहते हैं। ये यहाँ तक त्रिखंडी। देखो पहले हमने राजा देखे, वो 18 श्रेणियों के अधिपति थे, 500 राजाओं के अधिपति को अधिराजा कहा, 1000 राजाओं के अधिपति को महाराज कहा, 2000 राजाओं के स्वामी को अर्धमंडलिक कहा, 4000 वाले को मंडलिक कहा, 8000 राजाओं के स्वामी को महामंडलिक कहा और 16000 राजा जिसके अधिपत्य में है उसको हाँ नारायण कहा। 3 खंड पृथ्वी का अधिपति। अब 43 नंबर। षटखंड भरतनाथम द्वात्रिंशत् धरणिपति सहस्राणाम दिव्य मनुष्यम विदुरिह भोगागारम सुचक्रधरम। इस लोक में 32000 राजाओं से सेवित नवनिधि आदि से प्राप्त होने वाले भोगों के भंडार उत्तम चक्र रत्न को धारण करने वाले और भरत क्षेत्र के 6 खंड के अधिपति को दिव्य मनुष्य अर्थात चक्रवर्ती समझना चाहिए। ये अभी अभी हमने त्रिलोक सार में भी नव निधि वगैरह क्या होती है उसकी बात देखी थी। ये 32000 वाला वो चक्रवर्ती। 16,000 वाला वो नारायण था। 44 सकल भुवनैक नाथ तीर्थ करो वर्ण्य ते मुनि वरिष्ठ विदुधवल चामराणा तस्य स्याद्वै चतुष्षष्टि। जिनके ऊपर चंद्रमा के समान धवल 64 चंवर ढूरते हैं, ऐसे सकल भुवन के अद्वितीय स्वामी को श्रेष्ठ मुनि तीर्थंकर कहते हैं। सबसे मनुष्य संबंधी श्रेष्ठ कौन कौन है उसकी बात चल रही थी ना, वो राजा है, अधिराजा है, महाराजा है, मंडलिक है वगैरह वगैरह। अब उनके भी ऊपर ये चक्रवर्ती है। 45 तीर्थय रगण हरत्तम तहेव देविंद चक्रवर्तित्तम अन्नरिहमेव माही अभ्युदय सुहम वियाणाही। उसका अर्थ देखते हैं। इस लोक में तीर्थंकरपना, गणधरपना, देवेंद्रपना, देवेंद्र ने देवों के इंद्र, चक्रवर्तीपना और इसी प्रकार के अन्य अर्हर अर्थात पूज्य पदों को अभ्युदय सुख समझना चाहिए। यानी अन्य मनुष्यों के द्वारा जिन पदों को पूजा जाता है उसको अर्ह पद कहते हैं। अर्हत शब्द उसी लिया है ना, पूजनीय। यानी इस लोक में, यानी अभी हम मनुष्य संबंधी बात कर रहे हैं, तो उनमें तीर्थंकरा, गणधरपणमा, देवेंद्रपणा वगैरह वगैरह जो प्राप्त होता है, देव संबंधी देवेंद्र को लिया, बाकी सब मनुष्यों के हैं। इसको अभ्युदय सुख समझना है। अब दो प्रकार के देव संबंधी जो विभूतियाँ प्राप्त होती है, अभी हमने बताया था ना, दिव्य यहाँ लिखा था, देखो पेज नंबर 57 नीचे से तीसरी लाइन, इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश आदि देव संबंधी दिव्य सुख। अकेला इंद्र नहीं, वो बाकी भी जो कुछ विशेष होते हैं उनके, वो भी उनके ले लेना। एक होते हैं सामान्य देव होते हैं, किलविशी का अभियोग्य, और ये सब उच्च पद के धारी है, वो पद भी विशेष पुण्य के कारण मिलता है। अब ये तो हम अभ्युदय सुख की बात की, अभ्युदय फल क्या मिलता है उसकी बात की। अब मोक्ष संबंधी जो सुख है, ऊपर लिखा है ना, तत्र नैश्रेयसम नाम सिद्धानाम अर्हताम च अतीन्द्रिय सुखम उत्तम च, ये 46 नंबर है। अधिशयमादसमुत्थम विषयादीदम अणोवमनन्तम अवच्छिन्नम च सुहम शुद्धवजोगो यसिद्धानम। ये प्रवचन सार की गाथा है ना, प्रवचन सार 1 में 13 नंबर, वो सिद्धानम लिखा है, उसके बाद शुद्धवोगप्प सिद्धानम, ऐसा शुद्धवजोगो ये सिद्धानम के बदले शुद्ध ओगप्प सिद्धानम, ऐसा भी पाठ भेद है। प्रवचन सार की गाथा यहाँ उद्धृत की है, क्योंकि लिखने वाले तो आचार्य वीरसेन स्वामी हैं और उन्होंने ये उत्तम च करके गाथाएं प्रस्तुत की है, और प्रवचन सार तो उनके पहले लिखा गया था, कुमकुंद आचार्य का है, और वीरसेन स्वामी तो बाद में हुए हैं। षटखंडागम भले पहले रचा था, पर धवला की टीका तो बाद में हुई है ना वीरसेन स्वामी ने की, इसलिए उत्तम च गाथा जो जो दी है वो उनके पूर्ववर्ती ग्रंथों की दी हुई है। उसका अर्थ अतिशय रूप अधिशय माद अधिशय और अधिशयम आद समुत्थम, यानी आत्मा से उत्पन्न, अतिशय रूप आत्मा से उत्पन्न हुआ, विषयों से रहित, विषयातीत का ना, अनुपम अनंत अवच्छिन्न मैंने विच्छेद रहित सुख, तथा शुद्धोपयोग सिद्धों को होता है। ये अतीन्द्रिय सुख कैसा है उसकी बात है कि वो कैसा है, अतिशय रूप है। पेज नंबर 59 लास्ट लाइन हमारी चल रही थी, ये प्रवचन सर की गाथा इन्होंने उद्धृत की है यहाँ पर, उक्तम च कहकर। अतिशय रूप आत्मा से उत्पन्न हुआ, आत्मोत्थ जिसको कहेंगे, विषयों से रहित, अनुपम, अनंत और विच्छेद रहित सुख तथा शुद्धोपयोग सिद्धों को होता है। अब 47 नंबर को पढ़ेंगे। भाविय सिद्धंताणं दिनयर करणिं मलं हवैनाणं शिशिरयर करसरिच्छं हवैचरित्तं सवसरित्तं। जिन्होंने सिद्धांत का उत्तम प्रकार से अभ्यास किया है, देखो इन ग्रंथों को सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं, ऐसे पुरुषों का ज्ञान सूर्य की किरणों के समान निर्मल होता है और जिसमें अपने चित्त को स्वाधीन कर लिया है, ऐसा चंद्रमा की किरणों के समान चारित्र होता है। जिसमें का जिन्होंने भाव्य सिद्धांतानं दिनयर कर निम्मलम हवैनाणम शिशिरयर कर सरिच्छम हवई चरित्तम सवस चित्तम, जिन्होंने सिद्धांत का उत्तम प्रकार से अभ्यास किया, ऐसे पुरुषों का ज्ञान सूर्य की किरणों के समान निर्मल है और जिसमें अपने चित्त को स्वाधीन कर लिया है, ऐसा चंद्रमा की किरणों के समान चारित्र होता है। जिसमें ने चारित्र में लेना उन्होंने, अभी 48 को पढ़ेंगे। मेरुवनिप्पकम्पम नट्ठट्टमलम तिमूढमुक्कम सम्मद्दं सन्मौनमम उपज्जय पवयनभासा। प्रवचन के अभ्यास से, देखो प्रवचन अर्थात परमागम के अभ्यास से क्या फल मिलता है वो बता रहे हैं। मेरु के समान निष्कंप, 8 मल रहित, 3 मूर्ताओं से रहित और अनुपम सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। तत्तोचेव सुहायं सयलाय देवमणुयखयराणं उम्मुल्यट्टकम्मं पुडसिद्धसुहं पिपवयनादो। पवयनादो यानी उस प्रवचन से, यानी प्रवचन के अभ्यास से ही देव मनुष्य और विद्याधरों के सर्व सुख प्राप्त होते हैं तथा 8 कर्मों के उन्मूलित हो जाने के बाद प्राप्त होने वाला विशद सिद्ध सुख भी प्रवचन के अभ्यास से ही प्राप्त होता है, यानी मोक्ष सुख भी प्रवचन के अभ्यास से ही प्राप्त होता है, क्योंकि इससे सम्यक दर्शन होता है, उसी से बाकी बातें होती है, ये बात बता दी। 50 नंबर। जियमोहिंधन जलनो अन्नान तमंदयार दिनयरो कम्ममल कलुष पुसो जिनवयनमिवो वही सुहयो। वह जिनागम जीव के मोहरूपी ईंधन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है, अज्ञान रूपी गाढ़ अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। कर्म मल अर्थात द्रव्य कर्म और कर्म कलुष अर्थात भाव कर्म को, कर्म मल और कर्म कलुष दो बताए, कम्म मल कलुष, उसको मार्जन करने वाला समुद्र के समान है और परम सुभग है।
मार्जन करने वाला है,
मार्जन उसको नष्ट करने वाला, धोने वाला। ऊपर लिखा ना कम्म कलुष पुसवो, पुसने वाला। मराठी मध्ये कहते ना पहुंच कर साफ कर दिया उसको। मार्जन करना है ना, परिमार्जन करना जो है, परिमार्जन करना, मार्जन करना, उसको नष्ट करना, धोना। 51 नंबर। अन्नानतिमिरहरणं सुभवियहियारविन्दजोहणयम् उज्जोय्य सयलवहम् सिद्धंत दिवायरम् भजह। अज्ञान रूपी अंधकार को हरण करने वाले, भव्य जीवों के हृदय रूपी कमल को विकसित करने वाले और संपूर्ण जीवों के लिए पथ अर्थात मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले, ऐसे सिद्धांत रूपी दिवाकर को भजो। दिवाकर ने सूर्य 61 नंबर। अथवा जिनपालित, इस शिष्य का नाम है, इस श्रुतावतार के निमित्त है और उसका हेतु मोक्ष है। देखो ये जिनपालित की बात हम देखते हैं पेज नंबर 72 परिशिष्ट में निकालो। क्या लिखा आगे आगे आने वाली, हाँ अच्छा आगे आने वाली, मैं प्रस्तावना की बात पढ़ रही थी। 16-17 पर है, हाँ। प्रस्तावना
16-17 पान पर है। ये देखो 16 पेज पर पुष्पदंत,
16 पेज पर है पुष्पदंत और जिनपालित लिखा है ना। प्रस्तुत वही पैराग्राफ पढ़ेंगे नीचे का। ये प्रस्तावना का पृष्ठ 16 है। नीचे का पैराग्राफ, प्रस्तुत ग्रंथ में पुष्पदंत का संपर्क एक और व्यक्ति से बतलाया गया है। अंकलेश्वर में चातुर्मास समाप्त करके जब वे निकले तब उन्हें जिनपालित मिल गए और उनके साथ वे वनवास देश को चले गए। उसमें ब्रैकेट में लिखा है जिनवालियम दठुन पुफयंतायरो वनवास विषयम गदो। ये आगे आने वाली बात है, शायद ये 71-72 पर ये बात बताएंगे, वहां पर भी ये बात बताई है उन्होंने। यहाँ पर यदि दक्षिण का देखकर यही अर्थ ले जाता है तो यह नहीं मालूम होता कि जिनपालित कहाँ से आ गए। दक्षिण का अर्थ दृष्टुम अर्थात देखने के लिए भी हो सकता है, जिसका तात्पर्य यह होगा पुष्पदंत अंकलेश्वर से निकलकर जिनपालित को देखने के लिए वनवास चले गए। संगति की दृष्टि से अर्थ ठीक बैठता है। इंद्रनंदी ने जिनपालित को पुष्पदंत का भागिनेई अर्थात भनेज कहा है, पर इस रिश्ते के कारण वे उन्हें देखने के लिए गए यह कदाचित साधु के आचार की दृष्टि से ठीक न समझा जाए, इसलिए वैसा अर्थ नहीं किया। वनवास देश से ही वे गिरी नगर गए थे और वहां से फिर वनवास देश को ही लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जिनपालित को दीक्षा दी और विशदी सूत्रों की रचना करके उन्हें पढ़ाया और फिर उन्हें भूतबलि के पास भेज दिया। भूतबलि ने उन्हें अल्पायु जान महाकर्म प्रकृति पाहुड़ के विच्छेद भय से द्रव्य प्रमाण से लगाकर आगे की ग्रंथ रचना की। इन्हें पहले पुष्पदंत ने वो जिनपालित से वो ग्रंथ की रचना करके वो वहाँ भेज दिया बुधबली के पास, और उन्होंने बाकी सब वहाँ रचना कर दी। देखो एक पैराग्राफ छोड़ के नीचे देखो, पेज नंबर 17 ही पर ये प्रस्तावना के, वर्तमान ग्रंथ में पुष्पदंत की रचना कितनी है और बुधबली की कितनी इसका स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। पुष्पदंत ने आदि के प्रथम 20 सूत्र रचे, पर इन 20 सूत्रों से धवलाकार का समस्त सत्प्ररूपणा के 20 अधिकारों से तात्पर्य है, न कि आदि के 20 नंबर तक के सूत्रों से, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बुधबलि ने द्रव्य प्रमाणानुगम से लेकर रचना की। द्रव्य प्रमाणानुगम का अर्थ होता है वो संख्या संबंधी प्ररूपण चलता है ना, या था ना सत संख्या वगैरह, उसमें से पहले सत प्ररूपणा होती है और बाद में द्रव्य प्रमाणानुगम होता है। जहां से द्रव्य प्रमाणानुगम अर्थात संख्या प्ररूपणा प्रारंभ होती है वहां पर भी कहा गया है, वहां ऐसा लिखा था, संपदि चौदसन्नम जीव समानम अत्युत्तम अवगादानम शिष्याणम तेसिम चैव परिमाणम परिवोहनठम भूतबलि आयरियो सुत्तम आह। यानी यहाँ से भूतबलि आचार्य सूत्र कहते हैं ऐसी वहां से बात बताइए। यानी सत प्ररूपणा जो अधिकार है उसके करता है पुष्पदंत, और शेष समस्त ग्रंथ के करता है भूतबलि आचार्य। उस श्लोकों के उसमें क्या है, वो अक्षरों की संख्या को गिनते हैं ना, विशदी सूत्र का अर्थ होता है 20 अधिकार। अब ये बात आगे और आएगी 71 पेज पर, अभी हम 61 पेज पर है ना। पहले में पहले बहुव्यजनों को अध्ययन के लिए वगैरह वगैरह उन्होंने हेतु बता दिए, अब दूसरे पद्धति से निमित्त और हेतु बता रहे हैं। तो 61 पेज पर हम पढ़ रहे थे, अथवा जिनपालित इस श्रुतावतार के निमित्त है और उसका हेतु मोक्ष है, अर्थात मोक्ष के हेतु जिनपालित के निमित्त से इस श्रुत का अवतार हुआ है। यहाँ पर निमित्त और हेतु के कथन करने से पाठक जनों को हर्ष का उत्पन्न करना ही प्रयोजन है, यानी अध्ययन करने में वो अधिक उत्साहित हो इसलिए उसको बताया जाता है। अब परिमाण का व्याख्यान करते, परिमाण यानी प्रमाण, ये मूल ग्रंथ तो षटखंडागम है उसकी बात है। अक्षर पद संघात प्रतिपत्ति और अनुयोग द्वारों की अपेक्षा श्रुत का परिमाण संख्यात है, और अर्थ अर्थात तदवाच्य विषय की अपेक्षा अनंत है। फिर से प्रमाण की बात है और यहाँ श्रुत की बात है, तो कहते हैं श्रुत के अक्षर कितने हैं, संख्यात है, संख्या थे, टोटल अक्षर कितने हैं, इकट्ठी माइनस वन, ये अक्षर हो गए,
तो भी संख्या थी।
पद में एक पद में अक्षर कितने, कितने अक्षरों का एक पद होता है, 1634 करोड़ 83,07,888, इतने अक्षरों का एक एक पद होता है। मध्यम पद, ये जिसमें श्रुति की रचना होती है वो मध्यम पद ही केला। फिर संघात, इतने इतने पद होने पर एक एक संघात होता है, इतने इतने संघातों का एक एक प्रतिपत्ति होती है, ये आगे सब चलेगी, और इतने इतने प्रतिपत्तियों के अनुयोग होता है, तो इसकी अपेक्षा श्रुत का परिमाण संख्या था ये कहना चाहते हैं। यानी भले वो हजारों पदों की संगत हो गए, हजारों संग, परंतु वो फिर भी संख्यात में गिने जाएंगे। और पद की अपेक्षा 18,000 प्रमाण है, यानी वो पहला आचारांग है ना, 18,000 प्रमाण पद की अपेक्षा। अच्छा अच्छा, मध्यम पद नहीं लिए होंगे, 18,000 प्रमाण पद है, नीचे लिखा होगा। यह मैंने स्टार करके कहाँ लिखा 18,000 प्रमाण पद की बात। हाँ,
पेज नंबर 33 पे।
33 कौन सा? प्रस्तावना,
प्रस्तावना 33।
बहत्तर प्रमाण प्राकृत
लाइन, इस प्रकार 6 खंडों की 72,000 श्लोक प्रमाण प्राकृत और संस्कृत मिश्रित।
ये धौला टीका का प्रमाण है।
अच्छा,
और यहाँ बात हो रही है षटखंड आगम की। षटखंड आगम में 18,000 पदों की बात है। तो यहाँ पद यानी जो अक्षरों से पद यानी शब्द ले लेंगे, क्या हो गया 18,000, क्या हो गया उसमें?
पद की अपेक्षा बताए ना, 18,000 पद है।
षटखंडागम के तो नहीं बताए ना कितने हैं। उसकी भी आई होगी ना पहले, अभी हमने जहाँ बताया था उसमें उसका प्रमाण बताया होगा, षटखंडागम का प्रमाण
18,000 पद। 18,000 पद,
वही वही वो कहीं लिखा होगा ना यहाँ पर पहले प्रस्तावना, प्रस्तावना में वो धौला जो है, धौला टीका है, और यहाँ पदों की बात है ना षटखंडागम के। हाँ हाँ, वो 72,000 की बात है ना, उसमें से आप बता रहे। यहाँ तो नहीं लिखा है उसकी बात। ये उन्होंने जैसे ना विसेन आचार्य ने क्या लिखा है उसकी बात है यहाँ पर, वो तो मालूम है, प्रमाण पद, अर्थ पद और मध्यम पद है। यहाँ प्रमाण पद की भी बात हो सकती है, यानी एक एक सूत्र एक एक प्रमाण पद अगर ले, क्योंकि यहाँ सूत्र रूप है, हर में गाथा है तो है ही नहीं है। या श्लोक रूप से अगर उसको लेते हैं उन्होंने, अक्षरों की संख्या शब्दों की होगी, पद यानी शब्द हो सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे उसको। वो पूरे द्वादशांग की बात है और यहाँ षटखंडागम की बात चल रही है। हाँ, मध्यम पद जो है ना, एक एक पद में अक्षर कितने हैं? 1634,83,00,000, 7,000, 07, 83 के बाद 07 888
88,87,888
हाँ। अभी हमने क्या क्या देखा है? पहले मंगल, फिर निमित्त, हेतु, प्रमाण बताया, 18,000 प्रमाण है। ये क्यों बताए प्रमाण? तो शिक्षक जनों को हर्ष उत्पन्न कराने के लिए और मति संबंधी व्याकुलता दूर करने के लिए यहाँ पर परिमाण कहा गया है, यानी इतना बड़ा है तो ये हम निश्चित हो जाते हैं, हाँ इतना बड़ा ये ग्रंथ है। व्याकुल यानी जानने की व्याकुलता थी, कितना होगा, क्या होगा, क्या है, तो पहले ही बता दिया। नाम, इस शास्त्र का नाम जीव स्थान है। कारण, कारण का व्याख्यान पहले कराए हैं, उसी प्रकार यहां पर भी उसका व्याख्यान करना चाहिए। अब ग्रंथ के कर्ता, ये बताए ना परिमाण, कारण और कर्ता, हो गया समय, ये कर्ता की बात हम कल पढ़ेंगे क्योंकि उसमें और विस्तार है, मूल ग्रंथ के कर्ता कौन है, परंपरा के कौन है वगैरह वगैरह। अब यहीं पर रुकते हम। जावानी के ज्ञान से सूझे लो खालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मयंग भाई,